एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पे बात करने वाले हैं।
हाँ, किताब का नाम है सोरेन माओ की म्यूट कंपल्शन, अ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ कैपिटल।
नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जो मुद्दा है वो बहुत गहरा है और हमसे जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, ये किताब असल में एक बुनियादी सवाल उठाती है। ये जो पूंजीवादी सिस्टम है जिसमें हम सब जी रहे हैं, ये आखिर चलता कैसे रहता है? मतलब इसमें इतनी दिक्कतें दिखती हैं, इतनी नाइंसाफी की बातें होती हैं,
हाँ,
फिर भी ये टिका रहता है। क्या ये सिर्फ सरकार या पुलिस के डंडे के जोर पर है
या फिर कोई और ही बात है? और यहीं पर ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है।
अच्छा,
ये कहते हैं कि असली खेल वो डंडे का उतना नहीं है जितना एक अनदेखे, एक खामोश दबाव का है।
खामोश दबाव।
हाँ, एक ऐसी मजबूरी जो हमें महसूस तो होती है पर अक्सर दिखती नहीं। इसी को उन्होंने नाम दिया है म्यूट कंपल्शन, यानी मूक मजबूरी।
मूक मजबूरी।
और ये जुड़ी है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी नौकरियों से, हमारी जरूरतों से।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, है ना, जैसे कहीं फंसे हुए हैं।
बिल्कुल।
नौकरी शायद बदलना चाहते हैं पर लगता है बदल नहीं सकते, या महंगाई बढ़ रही है पर खर्चे कम करना मुश्किल है।
हाँ, ये किताब इन्हीं एहसासों के पीछे जो सिस्टम काम कर रहे हैं ना, उसे समझने में मदद करती है, खास तौर पर आर्थिक नजरिए से।
तो फिर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये विचार देने वाले लेखक हैं कौन? सोरेन माओ।
हाँ, सोरेन माओ ये डेनमार्क के हैं। एक कह सकते हैं कि काफी युवा और तेज तरार विचारक हैं।
अच्छा,
मार्क्सवादी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं और आजकल जो कंटेम्प्रेरी मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसमें इनका काम काफी अहम माना जा रहा है।
अच्छा,
खासकर एक चीज है वैल्यू फॉर्म थ्योरी, उस पर।
तो इनकी क्या खासियत है? मतलब मार्क्सवादी विचारक तो और भी हैं।
सही सवाल है। देखिए, बहुत से लोग जब पूंजीवाद की आलोचना करते हैं तो उनका ध्यान या तो सरकार पर होता है या बड़ी कंपनियों पर।
हाँ, ये तो है।
माओ थोड़ा अलग हटकर सोचते हैं।
अच्छा।
वो मार्क्स की जो ओरिजिनल जर्मन टेक्स्ट्स हैं ना,
अच्छा,
उनमें काफी गहरे उतरते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि पूंजीवाद की असली ताकत उसके आर्थिक ढांचे में ही छुपी है।
मतलब सिस्टम में ही।
बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि कौन ऊपर बैठकर हुक्म चला रहा है, बल्कि ये कि सिस्टम खुद हमें कैसे खास तरीके से जीने पर मजबूर कर देता है, अनजाने में।
दिलचस्प।
हाँ, और इनकी पढ़ाई का बैकग्राउंड भी काफी मिला जुला है, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी,
सब कुछ। तो इससे एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया मिलता होगा।
एकदम। इससे उन्हें एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते बल्कि मार्क्स के जो पुराने आइडियाज हैं उन्हें आज की दुनिया से जोड़ते हैं। हमारी नौकरियां, बाजार, ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब में वो मूक मजबूरी कैसे काम कर रही है ये दिखाते हैं।
ठीक है, तो लेखक को थोड़ा समझने के बाद अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका बड़ा मकसद क्या है? ये किताब क्या कहना चाह रही है?
देखिए, ये किताब एक तरह से पूंजीवाद की शक्ति के पीछे का राज खोलने की कोशिश है।
राज?
हाँ, ये पूछती है कि भाई ये सिस्टम बिना लगातार बंदूक दिखाए, बिना सीधे सीधे धमकाए, हम पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखता है।
अच्छा सवाल है।
ऐसा क्या है कि हम इसके कायदे कानून मानते चले जाते हैं, भले ही वो हमें पसंद ना हो या हमें नुकसान पहुंचा रहे हों?
तो माओ का जवाब क्या है इस पर?
उनका जवाब बड़ा, आप कह सकते हैं कि दमदार है। वो कहते हैं कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि वो समाज को इस तरह से गढ़ता है, इस तरह से बनाता है कि हमें लगने लगता है कि भाई बाजार के नियमों के हिसाब से चलना,
हाँ,
वही समझदारी है, वही एकमात्र लॉजिकल रास्ता है।
अच्छा, मतलब ये मजबूरी को नेचुरल बना देता है।
बिल्कुल, यही है मूक मजबूरी। ये किसी नेता के भाषण से या पुलिस डंडे से ज्यादा ताकतवर है।
ज्यादा ताकतवर कैसे?
क्योंकि ये हमारी हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, हमारी रोजी रोटी से जुड़ गई हैं। जीने के लिए कमाना है,
हाँ,
कमाने के लिए अपनी मेहनत बेचनी है। ये इतना स्वाभाविक लगता है कि हम सवाल ही नहीं उठाते।
तो ये एक तरह से पर्दे के पीछे से काम करती है, जैसे हमें लगता है कि हम आजाद हैं।
हाँ,
अपनी मर्जी से नौकरी चुन रहे हैं, अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन माओ कहते हैं कि ये आजादी असल में एक दायरे में बंधी हुई है।
दायरा? कैसा दायरा?
उनका तर्क है कि ये जो चुनने की आजादी है ना, जैसे
हाँ,
कौन सी नौकरी करें,
हाँ,
ये असल में एक मजबूरी का ही रूप है। आपको नौकरी चुननी है, पर नौकरी करनी ही पड़ेगी।
हाँ, ये बात तो है।
ये विकल्प आपके पास नहीं है अगर आपको मतलब सर्वाइव करना है।
सही।
तो सिस्टम आपको एक खास रास्ते पर ढकेल देता है और फिर उस रास्ते पर चलने के छोटे मोटे विकल्प देकर आजादी का एहसास कराता है।
वाह, ये तो काफी अलग नजरिया है।
तो ये किताब इसी पहेली को सुलझाती है कि इतने विरोधाभासों के बावजूद ये सिस्टम इतना टिकाऊ क्यों है।
हाँ बिल्कुल।
ये हमें मार्क्स के उस मूक मजबूरी वाले आइडिया से शुरू करके आज के लिए मार्केट, कंज्यूमर कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, इन सब तक की यात्रा कराती है।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने कहा किताब मोटे तौर पर दो हिस्सों में है।
हाँ।
और अपना तर्क को वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाती है।
तो शुरुआत कैसे होती है, पहले हिस्से में क्या है?
पहले हिस्से में माओ एक तरह से बुनियाद रखते हैं।
अध्याय वन जो है वो एक पहेली से शुरू होता है।
पहेली?
हाँ, पहेली ये कि पूंजीवाद जो साफ तौर पर शोषण और नाइंसाफी पर टिका है, फिर भी इतने आराम से कैसे चलता रहता है, कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को रिप्रोड्यूस करता है।
ये तो सच में पहेली है।
माओ कहते हैं कि सिर्फ ये कह देना कि भाई सरकारें से बचाती हैं या मीडिया हमें पट्टी पढ़ाता है, ये काफी नहीं है।
तो फिर
असली वजह कुछ और गहरी है, और यही वो इंट्रोड्यूस करते हैं मूक मजबूरी का कॉन्सेप्ट।
अच्छा।
ये एक सामाजिक ताकत है जो कानूनों या विचारों से ज्यादा हमारी आर्थिक जरूरतों के जरिए काम करती है।
मतलब सिस्टम की बनावट ही ऐसी है कि हम उसमें फंस जाते हैं एक तरह से।
बिल्कुल। और अध्याय दो शायद इसी बनावट की बात करता है।
अच्छा, क्या है अध्याय दो में?
अध्याय दो थोड़ा थियोरेटिकल है पर बहुत जरूरी है। ये मार्क्स के सामाजिक रूपों, सोशल फॉर्म्स के सिद्धांत पर बात करता है।
सामाजिक रूप मतलब?
आसान भाषा में कहें तो पूंजीवाद में हमारे जो आपसी आर्थिक रिश्ते हैं, जैसे खरीदना बेचना, काम करना,
हाँ,
जाते हैं जैसे वो कोई बाहरी चीज हो, जिनका अपना ही कोई नियम कानून हो, जो हमसे स्वतंत्र हो,
जैसे बाजार की ताकत।
हाँ, कुछ वैसा ही। इसे मार्क्स ने कमोडिटी फेटिशिज्म भी कहा था। मतलब हम चीजों को पूजने लगते हैं, पैसे को, सामान को, और ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे इंसानी मेहनत और इंसानी रिश्ते हैं।
सही कहा।
माओ समझाते हैं कि ये सिर्फ कोई दिमागी वहम नहीं है। इसी तरह पूंजीवादी रिश्ते हम पर एक दबाव बनाते हैं, एक मजबूरी पैदा करते हैं।
अच्छा, तो ये तो हुई थोड़ी थ्योरी की बात। असल जिंदगी में ये मजबूरी कहाँ दिखती है? अध्याय तीन शायद इसी पर फोकस करता होगा।
बिल्कुल सही। अध्याय तीन हमें ले जाता है मूक मजबूरी के, कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर।
ग्राउंड जीरो कहाँ?
लेबर मार्केट, जहाँ हम काम ढूंढते हैं।
ओह हाँ, नौकरी बाजार।
माओ याद दिलाते हैं कि देखिए, एक जमाना था जब ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन थी या गुजारे का कोई और जरिया था।
हाँ, वो आत्मनिर्भर थे एक तरह से।
फिर एक लंबी, बहुत लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया हुई।
हाँ।
जिसे मार्क्स आदिम संचय या प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन कहते हैं।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
उसके तहत लोगों से उनके वो संसाधन छीन लिए गए, जमीनें गईं, कॉमन लैंड्स बंद हो गए।
और नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया जिसके पास पेट पालने के लिए अपनी मेहनत, अपनी श्रम शक्ति बेचने के सिवा कोई चारा नहीं बचा।
तो जो हमें आज नौकरी चुनने की आजादी सी लगती है,
वो
असल में अपनी मेहनत बेचने की मजबूरी है। यही माओ का पॉइंट है।
ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ।
ऊपर से लगता है कि हम फ्री हैं।
हाँ।
हम इस कंपनी में अप्लाई करें या उस कंपनी में।
हाँ।
पर गहराई में देखें तो काम करना यानी अपनी लेबर पावर बेचना, ये हमारी जरूरत बन चुकी है। ये कोई चॉइस नहीं रही।
ये मजबूरी है जो स्वैच्छिक दिखती है।
बिल्कुल, पर है वो स्ट्रक्चरल, ढांचाबद्ध। और अध्याय चार इसी बात को और आगे ले जाता है।
अच्छा, कैसे?
ये दिखाता है कि कैसे बाजार का दबाव, जिसे वो मार्केट डिसिप्लिन कहते हैं।
मार्केट डिसिप्लिन, बाजार का अनुशासन, ये क्या है?
हाँ, मतलब बाजार का अनुशासन। सोचिए, कंपनियां हैं, उन पर मुनाफा कमाने का प्रेशर है।
हाँ बिल्कुल।
तो वो कर्मचारियों पर दबाव डालती हैं, खर्चे कम करती हैं, ये मार्केट डिसिप्लिन है। हम उपभोक्ता हैं, हम पर सस्ती चीजें खरीदने का दबाव रहता है, भले वो टिकाऊ ना हो या उसे बनाने वाले का शोषण हुआ हो।
हाँ, ये भी होता है।
जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए बाजार के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है।
तो ये जरूरत ही हमें डिसिप्लिन करती है।
एकदम। ये जरूरत हमारे पूरे सामाजिक जीवन को अनुशासित करती है। हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, सब पर इसका असर पड़ता है। ये एक ऐसा जाल है जो हमें हर तरफ से घेर लेता है।
तो ये जो मजबूरी है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और बाजार के लेवल पर ही नहीं है, ये और बड़े लेवल पर भी काम करती होगी, जैसे सरकारें या पूरा ग्लोबल सिस्टम।
सही पकड़ा। अगले अध्याय बिल्कुल इसी की बात करते हैं। अध्याय 5 राज्य यानी सरकार की भूमिका को देखता है।
सरकार क्या करती है इसमें?
माओ कहते हैं कि राज्य का काम सिर्फ डंडा चलाना या कानून लागू करना नहीं है,
तो फिर?
बल्कि उसका असली काम है उन कंडीशंस को बनाए रखना, उन नियमों और कानूनों को बनाए रखना, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिनके सहारे ये मूक मजबूरी आराम से बिना किसी रोक टोक के अपना काम करती रहे।
मतलब सरकार एक तरह से एनेबलर है।
हाँ, कह सकते हैं सरकार कोशिश करती है कि वो निष्पक्ष दिखे, न्यूट्रल दिखे।
हाँ।
लेकिन उसकी ये निष्पक्षता असल में पूंजीवादी मजबूरियों को स्वाभाविक या नॉर्मल बना देती है।
अच्छा।
और फिर अध्याय 6 वो इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाता है।
हाँ, अध्याय 6 बात करता है वैश्विक पूंजीवाद की, ग्लोबलाइजेशन की।
कैसे दुनिया भर के बाजारों का आपस में जुड़ जाना देशों पर, राष्ट्र राज्यों पर एक अलग तरह का दबाव डालता है।
कैसा दबाव?
जैसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं।
हाँ।
ये सब कैसे काम करते हैं? ये असल में मूक मजबूरी को एक देश की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में फैला देते हैं।
मिसाल के तौर पर,
जैसे गरीब देशों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, बाजार खोलने पड़ते हैं, सब्सिडी कम करनी पड़ती है।
हाँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स।
बिल्कुल, ये भी उसी मूक मजबूरी का एक ग्लोबल रूप है।
बाप रे, ये तो काफी निराशाजनक सी तस्वीर लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चारा ही नहीं है। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं है?
ये सवाल बहुत जरूरी है और माओ इसे नजरअंदाज नहीं करते।
अध्याय 7, जो कि आखिरी अध्याय है, वो इसी प्रतिरोध और बदलाव की संभावनाओं पर बात करता है।
तो क्या कहते हैं वो?
उनका विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कई बार जो पारंपरिक राजनीतिक विरोध होते हैं,
जैसे
क्यों?
क्योंकि असली ताकत तो उस मूक मजबूरी में है जो पर्दे के पीछे से काम कर रही है।
तो फिर कैसा प्रतिरोध काम कर सकता है? क्या कोई उम्मीद है?
माओ सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं देते, लेकिन वो इशारा करते हैं
किधर
कि शायद वो तरीके ज्यादा असरदार हो सकते हैं जो सीधे इस आर्थिक मजबूरी पर चोट करें।
अच्छा।
जैसे?
जैसे
काम रोक देना, स्ट्राइक करना, उत्पादन में बाधा डालना, सप्लाई चेन को बाधित करना।
ओह।
ये तरीके सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रखते हैं जहां से उसकी मूक मजबूरी पैदा होती है।
तो ये विश्लेषण हमें सिर्फ लक्षणों से लड़ने के बजाय?
बिल्कुल, ये हमें सतही लक्षणों से हटकर पूंजीवाद की जो बुनियादी संरचनात्मक ताकत है उसे चुनौती देने के बारे में सोचने को उकसाता है। ये प्रतिरोध की रणनीति के लिए, स्ट्रेटजी के लिए एक नई सोच दे सकता है।
वाह, ये तो वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली यात्रा रही है। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हों तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है आर्थिक शक्ति की अदृश्यता।
अदृश्यता?
हाँ, पूंजीवाद का सबसे बड़ा हथियार ये है कि उसकी ताकत दिखती नहीं, वो किसी राजा के हुक्म की तरह नहीं आती। वो आती है प्राकृतिक जरूरत बनकर, जैसे अरे भाई जीने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही।
हाँ, ये तो हम रोज सुनते और कहते हैं।
ये हमें सिस्टम का नियम नहीं लगता, ये हमें जिंदगी का सच लगता है और इसी अदृश्यता के कारण इसे चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात जो मुझे बहुत बहुत स्ट्राइक की वो है पसंद का भ्रम।
चॉइस का इल्यूजन।
हाँ, हमें लगता है कि हमारे पास कितने सारे विकल्प हैं, कौन सी नौकरी करें, कौन सा फोन खरीदें, कहाँ छुट्टी पर जाएं,
है ना?
लेकिन माओ दिखाते हैं कि ये सारे विकल्प एक पहले से तयशुदा दायरे के अंदर ही हैं।
हाँ।
जो बुनियादी मजबूरी है, जैसे काम करने की मजबूरी, वो अपनी जगह कायम रहती है। तो इसे आप कह सकते हैं संरचनात्मक बाधा के तहत पसंद की अपर्याप्तता।
बिल्कुल।
और तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है सामाजिक अनुशासन का ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन
मतलब?
मतलब ये सिस्टम खुद ब खुद हमें अनुशासित करता रहता है, इसके लिए किसी को डंडा लेकर पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, कैसे?
बाजार में टिके रहने का दबाव, वो कंपनियों को मजदूरों का शोषण करने पर मजबूर करता है। सस्ता खरीदने का दबाव हमें क्वालिटी या नैतिकता भूलने पर मजबूर करता है। ये सिस्टम का अपना लॉजिक ही ये काम कर देता है, जैसे कोई ऑटो पायलट मोड पर चल रहा हो।
और ये अनुशासन सिर्फ काम या बाजार तक ही सीमित नहीं रहता है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पूरी सोच पर, हमारे पूरे जीवन पर हावी हो जाता है। और यहीं आता है चौथा पॉइंट, प्रतिस्पर्धा का हर जगह फैल जाना,
कॉम्पिटिशन का यूनिवर्सलाइजेशन।
हाँ, आजकल देखिए, स्कूल में बच्चों पर टॉप करने का प्रेशर है, नौकरी में प्रमोशन की दौड़ है।
अरे हाँ, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़।
बिल्कुल,
पूंजीवाद इस कंपटीशन वाले लॉजिक को जिंदगी के हर कोने में फैला देता है। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है ये तो इंसानी फितरत है
कि इंसान तो कॉम्पिटिटिव होता ही है,
जबकि ये सिस्टम द्वारा पैदा किया गया है। और आखिरी बात जो शायद थोड़ी निराशाजनक लग सकती है सुनने में,
बताइए,
वो है सिर्फ विचारधारा बदलने की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ आइडियोलॉजिकल क्रिटिक।
मतलब
माओ कहते हैं कि आप पूंजीवाद की बुराइयों को कितना भी समझ लें, कितना भी जान लें, उसकी कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन जब तक आप उस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, आप उसमें हिस्सा लेने को मजबूर हैं।
ये तो कड़वा सच है।
हाँ, सिर्फ सोच बदलने से या जागरूकता फैलाने से सिस्टम नहीं बदलता। अगर बदलाव लाना है तो उस मूक मजबूरी की जड़ों पर, यानी आर्थिक संरचना पर चोट करनी होगी। ये तो बहुत ही गहरे सबक हैं। किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ यादगार कोट्स।
हाँ बिल्कुल है, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं।
जैसे
एक तो वही केंद्रीय विचार जो बार बार आता है, आर्थिक संबंधों की खामोश मजबूरी, द म्यूट कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। ये मार्क्स का ही वाक्यांश है जिसे माओ ने फिर से जिंदा किया है। ये पूरी किताब का सार है, कैसे बिना शोर शराबे के हमारी रोजी रोटी की जरूरतों के जरिए हम पर नियंत्रण रखा जाता है।
सही। और एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी थी, जो आपने पहले भी बताई, पूंजी कोई चीज नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक संबंध है जो चीजों के माध्यम से बनता है।
हाँ, कैपिटल इज नॉट अ थिंग बट अ सोशल रिलेशन बिटवीन पर्संस मीडिएटेड बाय थिंग्स।
इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि पैसा या मशीनें ये अपने आप में ताकतवर नहीं है।
अच्छा,
ताकत हमारे उन रिश्तों में है जो इन चीजों के इर्द गिर्द बनते हैं। मालिक मजदूर का रिश्ता, खरीदार बेचने वाले का रिश्ता, ये मजबूरी इन्हीं सामाजिक रिश्तों से पैदा होती है, चीजों से नहीं।
समझ गया।
और ये वाला विरोधाभास तो कमाल का है। बाजार स्वतंत्रता का क्षेत्र इसलिए लगता है क्योंकि उसमें भाग लेना संरचनात्मक रूप से अनिवार्य है।
ये तो सच में पैराडॉक्सिकल है,
है ना? कितनी उल्टी बात लगती है, लेकिन सोचिए, क्योंकि हमें जीने के लिए बाजार में उतरना ही पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है।
हाँ।
इसीलिए हमें वहां मिलने वाले छोटे मोटे विकल्प भी आजादी जैसे लगते हैं, जबकि असली मजबूरी तो पर्दे के पीछे काम कर रही है।
वाह। और आखिर में वो बात जो शायद सबसे ज्यादा डराती है या सोचने पर मजबूर करती है, आर्थिक शक्ति सबसे प्रभावी तब होती है जो वो सामाजिक दबदबे के बजाय प्राकृतिक जरूरत के रूप में प्रकट होती है।
हाँ, इकोनॉमिक पावर इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट अपीयर्स नॉट एज सोशल डोमिनेशन बट एज नेचुरल नेसेसिटी।
जब जुल्म नॉर्मल लगने लगे।
हाँ, जब मजबूरी कुदरती लगने लगे,
तो उसके खिलाफ लड़ना सबसे मुश्किल हो जाता है,
है ना?
बिल्कुल,
उसे पहचानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने भारी भरकम गहरे विचार हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें हैं या हम उन्हें अपने आसपास देख सकते हैं?
नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल देख सकते हैं, रोज देखते हैं।
कैसे?
जैसे ऑफिस में ही ले लीजिए, वर्क प्लेस पर।
हाँ,
कई बार हमें लगता है कि अगर हम अपने बॉस से ठीक से बात करें या कंपनी को उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएं,
हाँ,
तो शायद हालात सुधर जाएंगे।
हाँ,
लेकिन माओ के सिद्धांत क्या बताता है?
क्या?
कि ये सिर्फ मालिक की नीयत या अच्छाई बुराई का सवाल नहीं है।
हाँ,
उस पर भी तो मुनाफे का, कंपटीशन का स्ट्रक्चरल दबाव है।
हाँ, ये बात तो है।
शायद इसीलिए यूनियन बनाना या कलेक्टिव बार्गेनिंग करना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वो सीधे उस संरचनात्मक दबाव पर असर डालता है, सिर्फ व्यक्ति पर नहीं।
सही कहा। या फिर हमारे खरीदने के फैसलों को देखिए, कंज्यूमर चॉइस। हम सब जानते हैं कि शायद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए या फास्ट फैशन पर्यावरण के लिए खराब है।
हाँ, पता तो होता है,
पर फिर भी अक्सर हम वही चीजें खरीदते हैं जो सस्ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी जेब और बाजार की जो मूक मजबूरी है,
हाँ,
वो हमारे नेक इरादों पर, हमारे वैल्यूज पर भारी पड़ जाती है।
तो ये समझने से शायद हम अपने निजी लगने वाले चुनावों के पीछे के सामाजिक दबावों को बेहतर देख पाएं।
बिल्कुल, और राजनीति में भी ये दिखता है।
राजनीति में कैसे हैं?
हम वोट देते हैं, सरकारें बदलते हैं, पर कई बार लगता है कि जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता।
हाँ, ये शिकायत तो रहती है।
शायद इसलिए कि कोई भी सरकार सत्ता में आए, उसे निवेश खींचने का दबाव झेलना पड़ता है, आर्थिक विकास दर बनाए रखने का दबाव झेलना पड़ता है। ये आर्थिक मजबूरियां नेताओं के हाथ काफी हद तक बांध देती हैं। उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते कई बार।
और पर्यावरण संकट का जो आपने जिक्र किया था।
हाँ, पर्यावरण संकट तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। क्यों दुनिया भर की सरकारें और हम सब भी क्लाइमेट चेंज पर उतने ठोस कदम नहीं उठा पाते जितने उठाने चाहिए?
क्यों?
माओ का सिद्धांत बताता है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी या लालच का मामला नहीं है, पूंजीवादी सिस्टम की रग रग में जो ग्रोथ की मूक मजबूरी बसी है।
हमेशा ज्यादा उत्पादन, ज्यादा खपत।
हाँ, द कंपल्शन फॉर एंडलेस ग्रोथ, वही हमें तबाही की ओर धकेल रही है। ये सिस्टम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि उसका लॉजिकल नतीजा है।
तो कुल मिलाकर सोरेन माओ की किताब म्यूट कंपल्शन हमें पूंजीवाद को, हमारे समाज को देखने का एक नया लेंस, एक नया चश्मा देती है।
हाँ बिल्कुल, ये बताती है कि इसकी पकड़ का राज सिर्फ जोर जबरदस्ती या झूठे प्रचार में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की आर्थिक सच्चाई को, हमारी निर्भरताओं को इस तरह से बुनने में है कि हमें इसके नियमों में बंध कर जीना ही एकमात्र संभव, एकमात्र तर्कसंगत रास्ता नजर आता है।
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें आजादी और मजबूरी को शायद इतना ब्लैक एंड व्हाइट में देखना बंद करना होगा।
सही कहा। माओ यही दिखाते हैं कि कैसे पूंजीवाद आजादी का भ्रम पैदा करके ही अपनी मजबूरी को लागू करता है,
और वो कौन से छिपे हुए धागे हैं, वो कौन से अदृश्य तंत्र हैं जिनसे ये सिस्टम खुद को बार बार बुनता रहता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है।
ये किताब उन धागों को, उन तंत्रों को रोशनी में लाने का काम करती है।
और अंत में ये हमें एक बुनियादी, शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है ना।
कौन सा सवाल?
कि अगर हमारे बहुत सारे आजाद लगने वाले फैसले, हमारी पसंद असल में एक अनदेखी आर्थिक मजबूरी का नतीजा है, तो फिर सच्ची आजादी का मतलब क्या है? वास्तविक मुक्ति के लिए हमें किन चीजों को बदलना होगा? सिर्फ अपनी सोच को या फिर समाज की पूरी आर्थिक बनावट को ही?
बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको रुक कर सोचने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के संदर्भ में भी और समाज के संदर्भ में भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।